नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने रक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास के लिए आत्मनिर्भरता पर बल दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अनेक उड़ानें रद्द होने के कारण चालक दल के 25 वरिष्ठ सदस्यों की सेवाएं समाप्त की। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 2 डॉक्टर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि वर्तमान चुनाव मोदी की विकास गारंटी और राहुल गांधी के अपने परिवार हित की गारंटी के बीच है। उन्होंने तेलंगाना के भोंगीर में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मौका देने की अपील की।
तेलंगाना का ये डबल डिजिट स्कोर मोदी जी को 400 पार कराने वाला है। एक कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, और बोंगीर में ऐसा उम्मीदवार दिया जिसने राहुल गांधी का फर्जी सिग्नेचर किया था।
श्री शाह ने आरोप लगाया कि राज्य में एक दशक तक शासन करने वाली भारत राष्ट्र समिति ने अपने व्यक्तिगत हितों पर ध्यान दिया, जबकि 5 वर्ष तक सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने राज्य को एटीएम बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमआईएम, बीआरएस और कांग्रेस ने राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज शाम नरसापुर और सरूर नगर में चुनावी रैलियां करेंगे। भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव करीमनगर में रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों के नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। रायबरेली के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी नेता जगत प्रकाश नड्डा आज शाम लखनऊ में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा ने चित्रकूट में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता नरेंद्र मोदी सरकार को पूरा समर्थन दे रही है। श्री नड्डा आज फतेहपुर में भी चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद वे लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज और रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बहराइच, धौरहरा और लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली संसदीय क्षेत्र में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी है, हमने अपने वायदे पूरे किए हैं।
छत्तीसगढ़ में हमने कहा था हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, माफ हुए। कर्नाटका में हमने कहा था कि महिलाओं के खाते में 2000 रुपए हर महीने डलवाएंगे, डल रहे हैं आज भी। तो जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार है, हमने गारंटी को पूरा करके दिखाया है।
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी आज कन्नौज में चुनावी रैली करेंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम मध्य प्रदेश की खरगोन लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं।
मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके के लोकसभा क्षेत्र खरगोन में चुनावी तापमान चढ़ा हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खरगोन लोकसभा सीट का गठन 1962 में हुआ था। खरगोन सीट पर अभी तक 16 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें से 6 बार कांग्रेस और 7 बार भाजपा को जीत मिली है। खरगोन संसदीय सीट 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है, जिनमें 5 सीटें कांग्रेस के पास है और 3 सीटें भाजपा के पास। खरगोन संसदीय क्षेत्र में करीब 20,39,000 मतदाता है, जिनमें से 10,20,000 पुरुष और 10,18,000 महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या भी 28 है। इन चुनाव में खरगोन से कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस के पूरलाल खड़े के बीच है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
प्रोफाइल श्रृंखला में अब हम आंध्र प्रदेश की राजा महेंद्रवरम लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। राजा महेंद्रवरम को पहले राजमुंद्री के नाम से जाना जाता था। इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यहां 16 लाख मतदाताओं में से महिला मतदाताओं की संख्या पुरूषों से 40,000 अधिक है। ये राज्य की उन क्षेत्रों में से एक है जहां भाजपा ने 2 बार जीत दर्ज की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस की मार्गनी श्रीभरत ने ये सीट तेलुगु देशम पार्टी की मगंती रूपा के खिलाफ 1,20,000 मतों से जीती थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मैदान में उतरे 12 उम्मीदवारों में से एनडीए के दग्गुबाती पुनरेश्वरी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गुडूरी श्रीनिवास के बीच कड़ा मुकाबला है। दग्गुबाती पुनरेश्वरी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राजा महेंद्रवरम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का वादा कर रहे हैं। दूसरी ओर क्षेत्र के जाने माने डॉक्टर गुडूरी श्रीनिवास सार्वजनिक सेवा गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। विजयवाड़ा से साईं सिस्टला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
लोकसभा चुनाव में 6ठे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 25 मई को 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा। 6ठे चरण में दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। इस बीच दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 238 नामांकन वैध पाए गए। राजधानी में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों के उम्मीदवार समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए राजधानी में विभिन्न स्थानों पर विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। ये बूथ कश्मीर रेसिडेंट कमीशन 5 PR रोड नई दिल्ली, कश्मीर किसान घर BR2 शालीमार बाग दिल्ली, अर्वाचीन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पॉकेट एफ दिलशाद गार्डन और GGSSS पापरावत नजफगढ़ में स्थापित किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह दूसरे चरण में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल अयोध्या जाएंगे। एक दिन की यात्रा के दौरान वे श्री रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन करेंगे तथा कबीर टीला जाएंगे। वे सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज एक दिन के झारखंड दौरे पर हैं। उन्होंने देश के पूर्वी क्षेत्र में निवेश अवसरों के संबंध में झारखंड वाणिज्य और उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। संगोष्ठी का विषय था पूर्वी क्षेत्र विकसित भारत के लिए विकास इंजन। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड अपने विपुल खनिज संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में अस्थिर सरकार के कारण गरीबी बढ़ी है और विकास बाधित हुआ है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाओं की कार्ययोजना तैयार की है। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने रक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास के लिए आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि देश इस क्षेत्र में औरों पर निर्भर नहीं रह सकता। आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूत्र है। आत्मनिर्भरता से बुनियादी ढांचे की पूंजीगत लागत कम होती है। यूक्रेन के लिए अमरीका की देर से मिली सहायता का उदाहरण देते हुए श्री अरमानी ने कहा कि विश्व की भू राजनीति में कोई भी विश्वसनीय मित्र नहीं होता और देश दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए नवाचारी और उन्नत प्रौद्योगिकी निर्मित उपकरणों की आवश्यकता बताई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने वरिष्ठ चालक दल के 25 सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के इनके एक साथ अवकाश पर चले जाने के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवाओं पर असर पड़ा है। अब तक लगभग 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। आज भी 85 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। प्रभावित यात्री पूरा किराया वापस ले सकते हैं या बाद की तिथि के लिए यात्रा कार्यक्रम तय कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि वो आज मूल सहयोगी कंपनी एयर इंडिया की मदद से 20 यात्रा मार्गों पर 283 उड़ानों का संचालन करेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल जालसाजी का पर्दाफाश करते हुए दो डॉक्टर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने वालों से पैसे लेने, अपॉइंटमेंट तय करने के लिए रोगियों से रिश्वत लेने और फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने के आरोप हैं। सीबीआई ने इनसे संबंधित 15 स्थानों पर छापेमारी और एफआईआर दर्ज की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज सुबह ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बैठक की। उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद से भी मुलाकात की। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बांग्लादेश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। वह बुधवार शाम को ढाका पहुंचे और आज सुबह उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनके आधिकारिक आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। बाद में विदेश सचिव ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद से भी उनके कार्यालय में मुलाकात की। आज श्री क्वात्रा अपने बांग्लादेशी समकक्ष मसूद बिन मोमेन के साथ भी बैठक करेंगे। बैठक के दौरान इन दोनों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा, जल, व्यापार और निवेश, बिजली और ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी और उप क्षेत्रीय सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला पर चर्चा करने की संभावना है। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के मेट्रोपॉलिटन मोरान मोर एथेंसियस योहान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री योहान की समाज सेवा और वंचित लोगों के जीवन में सुधार लाने के प्रयास हमेशा याद रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री ने महाराणा प्रताप की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक है। देशभर में बढ़ते हुए पारे के साथ गर्मी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। विश्व में अप्रैल का महीना सन 1940 के बाद सबसे गर्म महीना रहा है। समूचे भारत में सामान्य से अधिक तापमान देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
देश का पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग अप्रैल महीने में भीषण गर्मी की चपेट में रहा। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में इन क्षेत्रों में सामान्य तापमान में 1.78 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि रही, जो कि अब तक के तापमान वृद्धि में एक रिकॉर्ड है। अभी पूर्वी भारत में बारिश के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत है, लेकिन गुजरात और राजस्थान जैसे पश्चिमी भारत के राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एलनीनो का प्रभाव चाहे कम या लानीना का प्रभाव बढ़े, तापमान में वृद्धि जारी रहे। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जीनामणि ने कहा,
अभी तक सूचना है पश्चिम राजस्थान का इलाका है, जैसे जैसलमेर है, चूरू है, गंगानगर है, ये जगह में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान है, इसलिए यहाँ हीट वेव चल रहा है और हम लोग ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है। अगर पूरा सारा भारत का बात करें तो अभी करेंटली कोई तापमान का ऐसे हीट वेव नहीं है। गंगटी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तो बहुत सारा जगह में तापमान 40 के नीचे है।
आकाशवाणी समाचार के लिए मैं अर्पिता चौधरी।
अब कुछ खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हराया। भारत और बांग्लादेश के बीच महिला क्रिकेट T20 श्रृंखला का पांचवां और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। मैच दिन के 3:30 से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला के चारों मैच जीतकर अब क्लीन स्वीप की तैयारी में है। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने जद्दा में चल रहे सऊदी स्मैश टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने रक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास के लिए आत्मनिर्भरता पर बल दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अनेक उड़ानें रद्द होने के कारण चालक दल के 25 वरिष्ठ सदस्यों की सेवाएं समाप्त की। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 2 डॉक्टर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।